मैं प्रयास करता हूँ जितना होता है, आप लोग थोड़ा मुझे मदद कीजिए, अगर जिसको हिंदी भी आता है इंग्लिश भी आता है मैं कुछ पूछता हूँ तो हिंदी में थोड़ा बता दीजिए मुझे। तो मैं पूछ रहा था प्रभु जी को कि क्या क्या आप डिस्कस करते हैं इधर, ताकि कुछ रेलेवेंट मैं बता सकूँ। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवद गीता से कुछ डिस्कशंस होता है एक एक वर्स लेके, और जपा के बारे में भी कुछ डिस्कशंस होता है। तो मैं आज सोचा कि शिक्षाश्रकम का पहला वर्स के ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे।
हरे कृष्ण हरी हरि बोल।
तो शिक्षाष्टकम सबको पता है, आप सब लोग चैंट करते हैं ना शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने एकदम बेसिक एक मेटीरियलिस्ट, एक भौतिकवादी कैसे कृष्ण प्रेम तक जा सकते हैं, वैसा काली आटी श्लोक में बहुत अच्छा सा बताया है उन्होंने, और उसका बहुत गहरा डीप एक्सप्लेनेशन से हमारा आचार्यगण ने लिखा है उसके बारे में। भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने दो प्रकार का कॉमेंट्रीज किया है उसके ऊपर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी किया है, और बाकी बहुत सारा आचार्यगण ने शिक्षाष्टकम के बारे में बहुत डीप कॉमेंट्रीज लिखा है। तो हम पहला ये जो वर्स है शिक्षाष्टकम का, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि क्या है उससे, वो एक वर्स में क्या क्या दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो पहले हम साथ में वो वर्स को एक बार बताएंगे। तो ये वर्ष में चैंटिंग का या भक्ति करने का सात प्रकार का बेनिफिट्स क्या है तो उसके बारे में बताया है। तो उसमें एक एक बेनिफिट के बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जब कल से जपा करेंगे तो थोड़ा और मन लगा के जपा कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो भक्ति है वो भक्ति का जो फ्यूल है,
ईंधन
वो है श्रद्धा। जितना श्रद्धा है उतना लंबा और उतना तेजी से हमारा भक्ति का गाड़ी चलेगा। और वो श्रद्धा को बढ़ाने के लिए एक्चुअली वो प्रोसेस के बारे में हमको समझना पड़ेगा, कितना बहुमूल्य है वो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। तो ये पहला जो वर्ष है शिक्षाष्टकम में, वो जो भक्ति करने का जो सात प्रकार का बेनिफिट्स दिया हुआ है, ये जो है अगर आप एक तरह से देखेंगे कि कोई भी एक रिश्ता में, अगर दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होना है, उसमें सात प्रकार का ऑब्स्टकल्स, तो ऑब्स्टकल्स क्या बोल,
रुकावटें,
तो सात प्रकार का रुकावटें आ सकता है उसमें। तो वो सात प्रकार का रुकावटें को हम निकालेंगे तो एक जो रिश्ता है बहुत गहरा हो सकता है। तो ये सात प्रकार का रुकावटें क्या है और भक्ति करने से कैसा ये रुकावटें निकल जाता है वो हम देखेंगे, ताकि ये जो सात रुकावट निकल गया तो भगवान के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा संबंध हो सकता है। पर ये जो सात प्रकार का जो रुकावटें हैं, ये खाली भगवान के साथ नहीं, इवन एक दूसरों के साथ भी ये जो रुकावट है, एक दूसरों के साथ का जो रिश्ता में भी ये सात प्रकार का रुकावटें हैं, तो हमारा संबंध गहरा नहीं हो सकता है। तो पहला जो बेनिफिट है चैंटिंग का, वो बोलते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो पहले हमको चेतः मतलब चित्त मतलब क्या है और उसको दर्पण से तुलना क्यों किया हुआ है, और उसमें जैसे एक दर्पण में कुछ धूल जम गया और जितना ज्यादा धूल जमा है उसके सामने हम आके खड़ा होंगे तो हमारा प्रतिबिंब उसमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो क्या है वो, क्यों ये पहला ये चित्त क्या है, उसका रोल क्या है, और उसको दर्पण के साथ तुलना क्यों किया हुआ है, और उसमें जो लगा हुआ धूल वो क्या है, ये तीन चीज को समझना पड़ेगा हमको। ये तीन चीज को हम समझेंगे तो तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये भक्ति करने से भक्ति करने का ये जो पहला बेनिफिट है चेतो दर्पण मार्जनम, वो कैसा हमको भगवान के साथ वो रिश्ता को जोड़ने में कैसा हेल्प करता है वो हम समझ पाएंगे। पहला ये जो चित्त क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। ये जो चित्त शब्द है संस्कृत में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग रहता है इसका। कभी कभी मन को भी चित्त बोलते हैं, कभी ये चित्त शब्द बुद्धि को भी इंडिकेट करता है, कभी चित्त बोल के एक अलग ही प्रकार का एक ये है। तो कभी कभी ये अभी बोर्ड मैंने सोचा कि कुछ चीज लिखेंगे तो आपको थोड़ा समझना इजी हो जाएगा, नहीं रहना
लिखने को बाद में ऊपर।
तो आपने सुना होगा, मैं मुझे देवनागरी लिखना आता नहीं, इंग्लिश में ही लिखता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए।
अंतकरण,
ये जो अंतकरण क्या करता है, जो हमारा सेंसरी सिग्नल्स आता है, सेंसरी सिग्नल मतलब किसी वस्तु को देखते हैं और कुछ शब्दों को सुनते हैं, कुछ चीज को चखते हैं, कुछ चीज का स्पर्शन होता है और कुछ चीज को सूंघते हैं, पर ये सब चीज क्या कर सकता है, कभी कभी कुछ इमोशंस में बदल जाता है। लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, आप भी सोच सकते हैं, बहुत सारा आपको एग्जांपल्स आएगा। मैं जब एक पांचवी के बाद एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया था, बोर्डिंग स्कूल को क्या बोलते हैं,
छात्रावास,
छात्रावास स्कूल, तो हाँ मतलब हॉस्टल, हॉस्टल में, तो सैनिक स्कूल था, मतलब सबको मिलिट्री में ट्रेनिंग देने के लिए। तो उधर कैसा था, लाइफ थोड़ा टफ था, इजी नहीं था, बहुत मतलब रेगुलर पनिशमेंट्स मिलता था और बहुत सिस्टमैटिक था, रेजिमेंटेड था एकदम। तो कभी कभी उतना छोटा उम्र में थोड़ा घर का याद आ जाता था, बहुत बुरा लगता था, इतना लोग क्यों पिटाई कर रहे हैं मुझे, इतना पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं बोलते। तो मेरा पिताजी का एक धोती था मेरे पास, तो कभी कभी बहुत थोड़ा होमसिक लगता था, तो मेरा कबोर्ड को खोल के वो धोती को लेके थोड़ा सूंघता था, थोड़ा स्पर्श करता था, पर ऐसा कुछ खास नहीं है वो धोती में, सादा धोती ही है, और शायद मैं सूंघ रहा हूं तो शायद डिटर्जेंट का ही स्मेल आ रहा है मुझे, पर फिर भी क्योंकि वो पिताजी से कटता इसलिए मुझे वो पूरा वो जो जो भी पनिशमेंट मिला, मारपीट मिला, सब कुछ भूल जाता था, खाली एक वो एक स्पर्श का उतना
पावर है,
पावर है उतना वो इमोशंस में, इमोशंस को क्या बोलते
हैं,
भावना में, तो उसमें बदल जाता है ये टच का। और अभी रिसेंटली हमारा गोवर्धन इको विलेज में तुलसी आरती का टाइम, जो नरसिंह देव का अर्पण किया हुआ जो गंध है, उस अत्तर वो हाथ में लगाते हैं ना सूंघने के लिए सुबह, तो वो लगाया उस दिन तुलसी आरती गा रहे थे, और लगाने के बाद उसको सूंघा तो ऐसा लगा कि सब भूल गए मैं, वो तुलसी आरती का ध्यान ही नहीं जा रहा था मेरा इसमें, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मेरा हार्ट का बहुत क्लोज है, ये गंध को मैं पहचानता हूं, ये मेरा बहुत, फिर क्या है मैं सोच रहा था, बहुत मतलब एक आनंद का अनुभूति हो रहा था मुझे, खाली एक गंध से, खाली नाक के अंदर एक गंध गया पर एक आनंद का अनुभूति को क्रिएट किया। तो मैं सोच रहा था क्या है क्या है, फिर तुलसी आरती खत्म हुआ, शिक्षाष्टकम खत्म हुआ, फिर जपा में बैठे, जपा में पहला एक दो माला मैं ध्यान ही नहीं कर पा रहा था, क्या है क्या है। फिर याद आया जब हम छोटे छोटे थे तब हमारा जो पिताजी थे एक प्रकार का परफ्यूम यूज करते थे, उसका ब्रांड था रेवलॉन बोल के, तो रेवलॉन परफ्यूम का वही जो फ्लेवर था, फ्रेग्रेंस था वो जो अत्तर का। तो ये जो 30 साल पहले जो मैंने सूंघा था, 30 साल तक वो था, खाली एक गंध के रूप में नहीं पर एक आनंद का अनुभूति के रूप में, तो ऐसा गंध है। और तीसरा टेस्ट, अभी रिसेंटली एक बहुत साल के बाद मेरा कजिन सिस्टर का घर गया था मैंने मैसूर में, उधर आसपास मेरा कुछ क्लासेस था वो खत्म करके उनका घर गया था, बहुत साल हो गया था, उनका शादी होके 7 साल हो गया था पर कभी उनका उनको मिला नहीं था मैंने, तो उनका घर में जाके रुका, तो उनका जो मदर इन लॉ सास ने कुछ खिलाया तो प्रसाद का टाइम, तो जब वो जो खिलाया उसको मैंने मुंह में डाला तो तुरंत कुछ अच्छा फीलिंग हुआ, तो मैंने पूछा उनको ये क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि आप आ रहे हैं बोल के मुझे पता चला, तो आपका मदर को मैंने फोन किया, फोन करके आपको क्या अच्छा लगता है, और उतना भी नहीं एग्जैक्ट रेसिपी लिख के ले लिया और वैसा ही बनाया। तो उतना एग्जैक्टली बनाया ताकि मैंने सोचा कि क्या मेरा मदर कुछ अंदर
चुपी है
क्या, ऐसा सोच रहा था मैंने। तो वो टेस्ट है, मतलब खाली हमारा जिह्वा उसका आस्वादन कर रहा है पर फिर भी वो अंदर जाके ऐसा एक कुछ इमोशंस को क्रिएट कर देता है। वो कैसा ये जो एक एक प्रकार का जो
सेंसेशन है,
सेंसरी
सेंस
परसेप्शन को क्या बोलेंगे,
संवेदना,
इंद्रिय,
सेंस परसेप्शन इज
जो भी है, जो जो टेस्ट है, जो टच है, जो स्मेल है, ये सब ऐसा एक इमोशन में
परिवर्तन
कैसे कन्वर्ट हो रहा है,
कन्वर्ट कैसा हो रहा है, ये हो रहा है ये अंतःकरण के द्वारा। तो ये जो अंतःकरण है जो हमारा हार्ट में है, चार है, शास्त्र भागवतम बताता है कि चार प्रकार का अंतःकरण है, और सबका एक एक रोल है, उसका फंक्शन अलग है। तो पहला है चित्त, नेक्स्ट है बुद्धि, नेक्स्ट है माइंड मन, और फोर्थ है अहंकार। पर ये चारों अंतकरण है ये किसके आधार पे काम करता है। अभी मैंने सुंगा उसको अत्तर को कैसे मुझे वो आनंद का अनुभूति कैसे आया, इसको बोलते हैं वासना, संस्कार या वासना बोलते हैं इसको, पास्ट इंप्रेशंस। पास्ट इंप्रेशंस बोलते हैं। तो अभी पास्ट इंप्रेशंस मतलब क्या है, अभी मुझे याद है कि जब मैं मेरा रिलेटिव्स है जो दिल्ली में रहते थे, मेरा मदर साइड रिलेटिव्स, तो दिल्ली में हर साल जाते थे। तो एक बार मेरा मौसी ने कुछ तो एक अचार खिलाया, वो जो अचार क्या था, वो सरसों का तेल में बनाया हुआ अचार था। हम तो साउथ इंडिया से है, सरसों का तेल कभी खाते ही नहीं, हम खाया ही नहीं, मैंने तिल का तेल खाते थे पर सरसों का तेल तो वो हमारे सिस्टम में ही नहीं था। तो पहले बार उसका स्मेल से ही मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आ गया, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं था। फिर अभी इस्कॉन में आने के बाद हम तो हमारे संप्रदाय से बंगाल से जुड़े हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मतलब बंगाल से, तो बंगाल मतलब सरसों का तेल ही है सब कुछ में। तो अभी थोड़ा करके ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, आप खाली चावल में थोड़ा सरसों का तेल डाल के देंगे तो भी मैं खा लूंगा, इतना अच्छा लगना हो गया। क्यों, क्योंकि पहले जब मैंने खाया था तो कुछ पास्ट उसमें इंप्रेशंस था ही नहीं, फिर स्लोली स्लोली एक के बाद एक जब जो इंप्रेशंस ऐड होने लगा तो स्लोली स्लोली वो टेस्ट डेवलप हो गया। तो ये है पास्ट वासना या संस्कार। तो अभी समझे कि आप ऑफिस से आ रहे हैं और सुबह सुबह खा के गए, फिर दिन भर कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रहा है आपको, और दरवाजा को खोले और तुरंत तो एक सुगंध आपका नाक में आ गया,
और तुरंत आप एकदम मुस्कुराना शुरू हो गए, मतलब एक्सटेसी आ गया। तो ये नाक में जाने के बाद और मुस्कुराने से मुस्कुराने के बीच में क्या हुआ,
प्रोसेस
क्यों ऐसा, ये नाक के अंदर जाने के बाद मुस्कुरा, आप मुस्कुराए क्यों, इसके बीच में क्या हुआ, क्या ये नाक है क्या जो वो स्मेल को आनंद में परिवर्तन कर दिया, या क्या है ये? तो समझिए कि प्रभु जी है, प्रभु जी का नाम क्या,
नीरज,
नीरज प्रभु अंदर आ रहे हैं, ये आपका घर है,
प्रभु जी का घर
है, प्रभु, ठीक है, प्रभु जी अंदर आए, प्रभु जी आपका नाम क्या,
सुनील मेहता,
सुनील प्रभु जी अंदर आए और माता जी समोसा बना रहे हैं, और समझिए कि प्रभु जी को समोसा बहुत अच्छा लगता है, और वो समोसा का सुगंध अंदर गया जैसे चार कुमारों वैकुंठ में गए और भगवान का जो तुलसी का सुगंध अंदर गए तो एकदम भाव विभोर हो गए, तो वैसे प्रभु जी को समोसा का सुगंध अंदर गया तो एकदम भाव विभोर होके आनंद हो गए। तो एक कैसे ये जो काली एक सुगंध है वो कैसे के भाव में कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये जो अंतकरण के द्वारा, पहले जब वो सुगंध अंदर जाता है नॉस्ट्रिल में या नाक में, तो पहले जो ये चित्त है, चित्त एकदम एक्टिवेट हो जाता है, चित्त बोलता है अरे मुझे ये
पता है
कुछ तो फेमिलियरिटी है, क्यों, क्योंकि उसको अनुभूति है, पहले इसको अनुभव किया है, तो चित्त बोलता है कुछ तो मेरा समवन इज ट्राइंग टू कैच माय अटेंशन, मतलब कोई मुझे
पिन पॉइंट,
कोई मुझे
चेतावनी दे रहा है,
चेतावनी नहीं, वो तो वार्निंग हो गया है,
वार्निंग नहीं,
ध्यान
आकर्षित कर रहे हैं कोई, तो बोलते हैं कि बुद्धि को बोलते हैं फाइंड आउट क्या है वो, मुझे इतना ध्यान आकर्षित कौन कर रहा है, क्या है ये, तो बुद्धि भी पूरा वो पास्ट इंप्रेशंस को ढूंढ देता है, पासवर्ड्स को,
रिकॉर्ड की फाइल्स फटाफट निकालने लगी,
क्या है ये, तो बुद्धि समझता ये है ना, ये जो कुछ सुगंध है और ये जो सुगंध है वो किचन से आ रहा है और लग रहा है कि ये समोसा का सुगंध है, तो जो डिटेल्स है
वो बुद्धि से आ रहा है,
वो बुद्धि एक्सेस कर लेता है, फिर वो मन को बोलता है, तो मन क्या करता है, मैं पहले जब भी समोसा खाया वो समोसा का खाने का अनुभूति कैसा था, वो भी ये पास्ट इंप्रेशन, ये संस्कार इसमें स्टोर हुआ है, उसको एक्सेस करता है,
इमोशंस की फाइल वहां से निकालता है,
इमोशन को निकाल देता है माइंड, और ये जो अहंकार जो है वो बोलता है कि मुझे क्या अनुभूति हुआ, वो जो इमोशन को खुद से जोड़ देता है वो है अहंकार। तो इधर है समोसा का स्मेल, ये जो पहले नाक के अंदर गया,
एक्टिवेशन मोड,
नाक से चित्त में गया, तो चित्त सोचा कि कुछ तो है, कुछ तो है, वो क्या है, वो बुद्धि पुराना रिकॉर्ड से वो पता कर देता है, और उसका एक्सपीरियंस क्या था वो माइंड पुराना रिकॉर्ड से वो ढूंढ लेता है, और अहंकार है कुछ से जोड़ लेता है वो इमोशन को, फिर
अकॉर्डिंगली जो भी इमोशंस है,
तो ये सब एक नैनो सेकंड में हो जाता है, तो सुगंध आया, नाक के अंदर गया और प्रभु जी हंसना शुरू हो गए, अच्छा लगा, अरे
समोसा
जगन्नाथ जी के बाद मुझे मिलने वाला,
जय जगन्नाथ जी।
आज समोसा नहीं है सबको,
आज समोसा नहीं है। तो तो वैसा है ये जो पूरा हमारा जो ऐसा जो स्पर्श हो या सुगंध हो या
विशन
विशन, अभी मैं ये रूम में देख रहा हूँ कोई जान पहचान नहीं है, चारी प्रभु को छोड़ के माता जी को छोड़ के। पर अगर यही रूम में मेरा शायद मेरा माता या पिता बैठे हैं तो उनको मैं देखूंगा तो आपके जैसे एक फॉर्म ही है, वो एक रूप है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पर बिकॉज उनके साथ मेरा संबंध था, अभी भी है, और उसका बहुत सारा जो उनके साथ जो आदान प्रदान का बहुत सारा जो मेमोरीज है वो स्टोर्ड है, तो तुरंत मेरा दृष्टि वो मेरा मदर के ऊपर या मेरा फादर के ऊपर पड़ा तो तुरंत चित्त बोलेगा कि कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है वो। बुद्धि बोलेगा अरे आपका माता पिता है, उनके साथ आपका बहुत सारा आदान प्रदान हुआ है। और माइंड बोलता है कि बहुत अच्छा था
वो एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अहंकार बोलेगा कि और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ, और तुरंत वो एक प्रकार का जो फीलिंग में कन्वर्ट,
इमोशंस में
कन्वर्ट हो
जाता, शो अप कर जाएगा
वो। तो ये जो हम भौतिक संसार में है तो हम सबको ऐसा बहुत सारा अनंत कोटि जन्मों से हमने अर्जन किया है, बहुत सारा ऐसा अनुभूति, ऐसा संस्कार, और ये संस्कार के वजह से हमको बहुत कुछ अच्छा फीलिंग्स है, कुछ बुरा फीलिंग्स है, बहुत सारा चीजों के प्रति। पर ये सब भौतिक भावना है, कृष्ण के प्रति एक अनुकूल भावना नहीं है। हमारा इंद्रिय तृप्ति का अनुकूल भावना ही है। तो अगर तो इसलिए ये जो संस्कार है, ये जो वासना है, क्योंकि एक हमको कृष्ण के प्रति एक उन्मुख होने के लिए अनुकूल नहीं है,
कपड़ा रुमाल
नहीं
तो ये जो है, ये जो संस्कार वासनाएं है, ये सब भौतिक वासनाएं ही है। तो ये कृष्ण भक्ति के प्रति अनुकूल नहीं है। अभी देखिए, समझिए कि कोई किसी को उनके शादी के पहले कुछ और एक माता जी को दूसरा एक पुरुष के प्रति कुछ आकर्षण था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद थर्ड कैंटो का एक परपोर्ट में माताएं का साइकोलॉजी ऐसा है कि पहले जिनके प्रति उनको आकर्षण हो गया उनको भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये जो भौतिक संसार में हम सब लोग तो प्रकृति ही है, माता ही है, एक जेंडर में देखेंगे तो स्त्रीलिंग ही है, एक ही पुरुष है, वो है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। तो हमको उनके प्रति हमारा चित्त को, हमारा मन को लगाना है, पर ये बहुत सारा ये भौतिक वस्तुओं के ऊपर हमारा ऑलरेडी मन लग चुका है, अभी ये सबको निकाल के भगवान के प्रति हमारा जो मन को लगाना है ये इजी नहीं है, क्योंकि नेचुरल हमारा जो स्वाभाविक साइकोलॉजी क्या है, जिसके प्रति पहला हमारा मन लग चुका है उससे निकाल के और एक पुरुष के प्रति लगाना इजी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये है पहला ऑब्स्टकल। तो और ये पूरा भरा है, खाली ये लाइफ टाइम का नहीं है, बहुत सारा लाइफ टाइम का जो जो भी अनुभूति किया है वो ये वासना या संस्कार के रूप में भर भर के है, और इसको ही बोलते हैं अविद्या। अविद्या क्यों? क्योंकि विद्या जो है मतलब सच्चा ज्ञान वो है कि कृष्ण है वो अखिल रसामृत मूर्ति है, सब रसों का मूर्तिमान स्वरूप है। मतलब कोई भी व्यक्ति को परफेक्टली रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उनका जो
आदान प्रदान
ये भौतिक जगत में कोई भी एकदम परफेक्टली किसी से आदान प्रदान कर ही नहीं सकते। अगर कोई बहुत मीठे मीठे बोलने वाले हैं तो शायद वो हर टाइम रहेंगे नहीं, या हर टाइम उनका मूड ठीक नहीं रहेगा, तो ऐसा बहुत कुछ ये हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। पर भगवान ऐसा एक व्यक्ति है जो एकदम सही तरफ से आदान प्रदान कर सकते हैं, ये है विद्या। और दूसरा एस्पेक्ट ऑफ विद्या है ये भौतिक जगत में कोई भी जड़ वस्तु या भौतिक जो जो रिलेशनशिप्स है उसका एक लिमिट रहता है, हमको पूरी तरफ से संतुष्ट करने का, तो वो जो लिमिट रहता है। पर ये जो अनुभूति है ये एक्चुअल विद्या बोलता है कि आपको ये भौतिक जगत का वस्तुओं से कुछ ज्यादा खुशी नहीं मिल सकता, यही संस्पर्श जाब होगा दुख का यो नहीं है वते, जो भी ये भोग वस्तु है उस ये पहला भोग रहेगा पर थोड़ा दिन में वो बहुत तो
नीरस हो जाएगा,
दुख का जो ये हो जाएगा, कारण बन जाएगा ये। तो पर ये विद्या है, पर हमारा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा कम कर सकते हैं उसको,
उधर वाला
अच्छा
उतना वाला चालू कर, इसको बंद कर, वो वाला चालू एकदम छोटा कर दो, वो स्लो नहीं होता,
ठीक है चलेगा
अब ट्यूनिंग हो गया, उसका संस्कार आ गया अभी इतनी देर में।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो विद्या ये है कि ये भौतिक जो रिलेशनशिप्स है, भौतिक जो वस्तु है उसमें पूर्ण रूप से हमको संतुष्टि नहीं मिल सकता है। पर ये जो वासनाएं हैं, ये जो संस्कार है वो बोलेगा अरे ये तो गलत है, मैंने तो पहले बार लास्ट टाइम मैंने जो खाया उससे बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो हम ये जो भौतिक जिह्वा से उसको आस्वादन कर रहे हैं, सच्चा जो सुख क्या है उसका अनुभूति हुआ नहीं, अगर वो हुआ तो उसका तुलना में इसको हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उसका अनुभूति नहीं हुआ तो हमारा जो वासना बोल रहे हैं अरे इससे अच्छा अनुभूति कभी हुआ है क्या आपको, तो उसको क्यों सुन रहे हैं आप, वैसा वो बोले। तो इसलिए इसको ये जो वासनाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, इसको अविद्या बोलते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये भौतिक अनुभूतियां हमको जनरली क्यों होता है, मतलब क्यों भगवान ने हमको ये भौतिक जगत में डाला, अलग अलग प्रकार का जो रिलेशनशिप्स क्रिएट किया और उसका अनुभूति करवाया और उससे वासनाएं अर्जन हुआ और उसके वजह से उनके साथ एक
दूरी बन गया
अभी ऐसा क्यों? ये नेचुरली सबको ये प्रश्न तो उठता ही है। तो अब अभी देखेंगे तो ओरिजिनली जब जीवात्मा जो है उन्होंने देखा कि सब लोग है भगवान को ही मानते हैं, भगवान से ही भगवान को ही सम्मान देते हैं, उनको ही पूजा करते हैं। अभी सोचते हैं कि अरे मैं तो इनके बिना भी मैं थोड़ा खुश रहना चाहता हूं, इनको भूल के इनके बिना भी मैं खुश रहना चाहता हूं। पर ये जो जीवात्मा का जो स्वाभाविक ही रूप नेचर है उसके वजह वो जो जीवात्मा है वैसा भगवान के भिन्न होके भगवान
से अलग होके
वो जो सुख का अनुभूति कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने जीवात्मा को वैसे बनाया। भगवद गीता का जो पहला टीचिंग है वो क्या है, भगवद गीता का पहला टीचिंग क्या है? हाँ करेक्ट। उससे भी पहले वो बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को ये देहिनोस्मिन यथा देह, ट्रांसमाइग्रेशन के पहले भी बोलते हैं नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतपरम। कृष्णा बोलते हैं कि ये जो ये अर्जुन ऐसा कभी भी एक समय नहीं था जब आप नहीं थे और मैं नहीं था और कभी भी ऐसा समय नहीं होगा जब आप नहीं रहेंगे और मैं नहीं रहूंगा। भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों काल में आप भी एटर्नल क्या बोलते हैं, आप भी नित्य है मैं भी नित्य हूं, शाश्वत है। अगर कोई भी जो शाश्वत चीज को शाश्वत चीज का सृष्टि नहीं होता, शाश्वत चीज शाश्वत ही रहता है। और कोई एक चीज शाश्वत है तो उसका धर्म वो भी शाश्वत है। तो भगवान ने जीवात्मा का सृष्टि नहीं किया, भगवान के साथ जीवात्मा जो है सनातन काल से
है
ही, और जो उनका धर्म है वो भी सनातन है, इसलिए सनातन धर्म बोलते हैं। तो अगर जीवात्मा सनातन नहीं है, एक टाइम पे सृष्टि हुआ है जीवात्मा का, तो सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म मतलब जीव का धर्म है, जैव धर्म बोल के बोलते हैं उसको। अगर जीव सनातन है इसलिए उनका धर्म भी सनातन है। धर्म का मतलब क्या है? उनका क्वालिटीज। तो जीवात्मा का क्वालिटीज क्या है? So, जीवात्मा का धर्म क्या है? वो है भगवान का जो भगवान से
जो संबंध है
वो संबंध में ही उनका
सुखी
सुख है।
आनंद हुई।
वैसे भगवान ने बनाया नहीं जीवात्मा को, वैसा ही भगवान सनात जीवात्मा सरकार से वैसा वही है उनका धर्म। पर ये जो जीवात्मा है उनको माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, मतलब स्वतंत्र स्वतंत्रता है,
स्वतंत्रता का अनुभव।
तो वो क्या करता है, वो स्वतंत्र इच्छा के द्वारा वो कभी ऐसा सोच भी सकता है कि क्यों हर बार मैं भगवान, मेरा सुख हर बार भगवान का सुख से संबंधित क्यों होना चाहिए, क्यों भगवान के संबंध के बिना मैं अकेले में सुख का अनुभूति नहीं कर सकता हूं क्या? एक्चुअली नहीं कर सकता है। पर भगवान क्या क्या सोचते हैं, अरे इसका भी नहीं हो सकता है पर एटलीस्ट कुछ तो उसका सबसे क्लोजेस्ट अनुभूति तो मैं देने का प्रयास करता हूं उसका। तो क्या करते हैं, उनको भौतिक जगत में भेज देते हैं। भौतिक जगत में भेजने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, इसको ऐसा एक वातावरण क्रिएट करता हूं जिससे वो मुझे भूल जाएगा। और वो वातावरण कैसे क्रिएट करते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आपने सुना होगा फेमस वर्स ही है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। सुना है आपने ये वर्स, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। इसका मतलब है हे अर्जुन, मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम्। भगवान बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत का जो जीवात्माएं हैं वो मुझे समझ नहीं पाते हैं उसका, क्योंकि एक योग माया का जो वो
पर्दा है,
पर्दा है वो
पड़ा हुआ है,
पड़ा हुआ है। क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं उनका वो जानकारी देता ही नहीं जब तक वो स्वेच्छा से मुझे जानने का इच्छा को जागृत करते हैं, तब तक ये पर्दा हटेगा नहीं। पर ये पर्दा क्या है, किससे बना हुआ पर्दा है, ये नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, कॉटन है, खादी है, क्या है ये, ये पर्दा क्या है, तो ये योग माया का पर्दा क्या है, इसका मटेरियल क्या है,
ये संस्कारों का पर्दा है, है ना?
कोई तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ये है 7.25 है ये वर्स, भगवत गीता का 7वां अध्याय का 25वां श्लोक है। 27वां श्लोक में बताते हैं भगवान ये पर्दा क्या है, ये पर्दा किससे बनाया हुआ पर्दा है, ये तीन गुणों से बोल रहे हैं माता जी, इल्यूशन बोल रहे हैं, वही है योग माया, माया मतलब इल्यूशन ही है। ओके मैं बताता हूं, ये जो 7.27 जो वर्स है उसको बोलने से पहले ये जो पर्दा किससे बनाया मैं बताता हूं, और वो जो श्लोक से ये पर्दा का वर्णन कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूंगा। ये जो पर्दा है चार चीजों से बनाया हुआ पर्दा है, एक है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और पांचवा है सॉरी पांच है पांचवा है अभिनिवेश। तो ये क्या है, बहुत सिंपल है, खाली ये जो जो शब्द है शायद आप आपसे जान पहचान शब्दों नहीं हो सकते हैं, पर ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है, आप इजीली समझ पाएंगे इसको। कुछ बड़ा चीज है ही नहीं, क्योंकि हम रोज यही कर रहे हैं हम सब लोग। तो ये जो अविद्या है, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया, संस्कार, जो वासनाएं हैं, जो भौतिक वासनाएं जिन्होंने जो हमने अर्जित अर्जन किया है, उसको ही अविद्या बोलते हैं। तो ये अस्मिता क्या है? ऐसा नहीं है कि हम हमको अनंत कोटि जो जन्म लिया है वो सब में हमको मनुष्य जन्म ही मिला, ऐसा बोल नहीं सकते हम। कभी शायद गाय रहे होंगे, कभी शायद घोड़ा रहे होंगे, या हिरण, या कुछ भी, अभी समझिए। और वो सब इंप्रेशंस भी हमारा हार्ट में है। जब हम गाय थे, जब हम हिरण थे, जब हम घोड़ा थे, ये सब इंप्रेशंस है, संस्कार है हमारा हार्ट में। अगर समझिए कि अभी आपको बहुत भूख लग रहा है और कुछ भी नहीं है, कोने में देख रहे हैं कि एक घास का एक बंडल पड़ा है, उसको देख के आपका मुंह में पानी आता है, शायद आप भूखे भी मर जाएंगे पर वो घास को तो नहीं खाएंगे ना। कुछ भी हो, क्यों? आप तो पिछला जन्म में शायद गाय रहे होंगे, तो तब तो पूरा वो घास खाने का तो पूरा जो इंप्रेशंस है वो आपका हार्ट में है। अगर आपका भक्ति ना करने के वजह से अगला जन्म में दोबारा गाय का जो
योनि मिला
तो आप पैदा होने के बाद तुरंत माँ का वो स्तन पे भागेगा वो बछड़ा, कैसे वो याद रहता है? वो पुराना संस्कारों की वजह से है? जब गाय का जो बर्थ मिल जाता है तो तुरंत वो
घास की तरफ जाता है
पर उसको ही अगला तरफ अगला जन्म में एक मनुष्य योनि मिल गया तो उसको चावल या गेहूं का रोटी वो खाने से उसका संतुष्टि होता है। तो ये जो अस्मिता है ये रेस्ट्रिक्ट करता है ताकि हम ये जो वर्तमान बॉडी मिला है हमको उससे ही आकर्षित होना चाहिए ना। अगर आप मनुष्य योनि में घास के प्रति आकर्षित होए, या आपका कोई एक पिछला लाइफ में हमको सुअर का जन्म मिल गया और वैसा पदार्थों के प्रति हमारा आकर्षण हो गया तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो काली हमको सब्जी चपाती और चावल के प्रति हमारा आकर्षण होता है, वो है अस्मिता। ये जो करंट जो बॉडी है आपको अभी जो मिला है वो ही संस्कार का जो फाइल है वही उतना ही आपको मिलता है, उसका ही एक्सेस मिलता है आपको, दूसरा फाइल का एक्सेस नहीं मिलता है,
एडमिन एक्सेस नहीं है।
ये है, यही है प्रकृति का जो सिस्टम है,
यूजर एक्सेस।
तो ये है अस्मिता। तो समझिए कि अभी हम सबको मनुष्य का योनि है और उसमें कुछ लोगों को करेला पसंद है, कुछ लोगों को आलू पसंद है, तो अलग अलग लोगों को कुछ कुछ चीज के प्रति, कुछ वस्तुओं के प्रति आकर्षण रहता है, कुछ वस्तुओं के प्रति द्वेष रहता है, कुछ वस्तुओं के प्रति इच्छा रहता है, कुछ वस्तुओं के प्रति द्वेष रहता है। तो उसको बोलते हैं राग और द्वेष,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
हाँ, तो ये जो राग और द्वेष है, ये जो अविद्या है, जो संस्कार है, इसका रिलेशन में ही वर्क करता है। क्योंकि तुरंत करेला को देख के हमको द्वेष क्यों आता है? क्योंकि वो जो कड़वा करेला खाने का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो याद है, इसके वजह से है ना। पर ये जो राग और द्वेष है ये राग और द्वेष में नहीं रहता है, ये अभिनिवेश बन जाता है। अभिनिवेश का मतलब क्या है, जो अच्छा लगता है उसको और खाने का और अर्जन करने का जो वृत्ति है वो बढ़ जाता है, ग्रीड। और जो अच्छा नहीं लगता है उससे भागने का और उसको अवॉइड करने का जो ये है, माइंड को पूरा
कैप्चर कर लेता है,
कैप्चर कर देता है। तो जो अच्छा लगता है उसके प्रति भागना, उसको अर्जन करना, जो बुरा लगता है उससे उसको नफरत करना उससे। तो हमारा जो माइंड है ये जो राग द्वेष इसके प्रति अभिनिवेश पूरा एकदम मग्न हो जाता है। तो एक छोटा सा एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी मतलब ये सच है, स्टोरी नहीं है, मतलब कल्पना नहीं है। रशिया में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, पावलोव बोल के। ये जो पावलोव है बिहेवियरल साइकोलॉजी, मतलब अलग अलग प्राणियों का जो जो बिहेवियर है उसको समझ के उसका साइकोलॉजी को स्टडी करते थे। वैसे एक बहुत ही मशहूर फेमस साइंटिस्ट थे पावलोव बोल के, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने अलग अलग प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट सब किया था। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसका पावलोव का अंडरस्टैंडिंग क्या है हमको पता नहीं, पर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका जो ये एक्सपेरिमेंट को हम सुनेंगे तो हमको एक बहुत अच्छा चीज हमको समझ में आएगा, भगवान का बुद्धि क्या है वो समझ में आएगा हमको।
अरे बोल।
तो ये पावलोव ने क्या किया, एक लंबा सा एक चूहा का ट्रैप को क्या बोलते हैं,
चूहेदानी
चूहा पकड़ने का जो ट्रैप है उसको डिजाइन किया। और ये इंटरेस्टिंग ये था, बीच में उसका डोर था, उसका दरवाजा, और दोनों साइड पे एक
जाली
था, जाली नहीं एक
गेट या एंट्री,
एक प्रोविजन था जिसमें वो खाना को लगा सकते थे, हुक था। तो दोनों साइड में उन्होंने केक लगा दिया और चूहा को अंदर डाल दिया, डोर को बंद कर दिया। तो चूहा गया एक बाजू, दाहिने बाजू गया, केक को खाया, बहुत अच्छा लगा, बोला कि बहुत अच्छा है, तो केक को पूरा खत्म किया। फिर बाएं बाजू गया, वो भी केक को खा लिया, तो एकदम पेट भर गया, तो दिन खत्म। तो अगला दिन क्या किया, दोबारा दोनों बाजू केक लगा दिया उसने, तो अगला दिन भी खा लिया उसने। वैसे तीसरा चौथा दिन तो चूहा को पता चल गया कि आराम है। तो एक दिन क्या किया वो पावलोव ने,
दरवाजा खोल दिया,
दरवाजा नहीं खोला, एक बाजू वाला केक में थोड़ा एक छोटा सा एक करंट शॉक लगा दिया केक के अंदर। तो सुबह उठा चूहा, जाके खाया, थोड़ा देर खाने के बाद टंग बोल के एक शॉक करंट मिल गया, मरा नहीं वो, छोटा सा एकदम पर एकदम उसको हिला दिया
सेंसेशन।
तो उसको समझा नहीं क्या हुआ, शायद मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूं बोल के दूसरा बाजू से जाके वही केक को खाया। थोड़ा खाने के बाद तुरंत दोबारा उसको
करंट लगा।
वो सोचा कि शायद ये साइड पे कुछ गड़बड़ है, दूसरा साइड में जाके खाता हूं बोले। दूसरा साइड खाया, कुछ करंट नहीं लगा, अच्छा से खा लिया। नेक्स्ट डे अगला दिन सोचा कि दोबारा एक और बार ट्राई करता हूं, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो दोबारा ट्राई किया तो दोबारा उसको शॉक मिला, तो समझ गया कि ये साइड ही गड़बड़ है, इसमें साइड में आना नहीं चाहिए। तो क्या किया, दूसरा बाजू जाके केक खा लिया, संतुष्ट हो गया, ठीक है एक केक काफी है, दो नहीं मिलना है, मेरा नसीब में नहीं है। तो वैसा ही कुछ दिन वो राइट साइड को पूरा अवॉइड ही कर लिया उसने, वो साइड भी नहीं गया, खाली लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो खा के संतुष्ट हो गया। कुछ दिन के बाद पावलोव ने क्या किया,
इंटरचेंज किया,
चेंज कर दिया। सो सुबह उठा चुहा, राइट साइड तो गया ही नहीं, सीधा लेफ्ट साइड में जाके काना शुरू किया तो करंट मार गया उसको। तो सोचा कि अरे मुझे क्या हो गया, तो मैंने बोला कि मैं भी मैं थोड़ा इमेजिन कर रहा हूं। तो दूसरा बाजू जाके काया तो तुरंत दोबारा शॉक लग गया उसको, तो उसको डर आ गया। अभी दूसरा बाजू में शॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्लोली जाके उसको काना शुरू किया, शॉक नहीं हुआ। तो रोज अभी राइट हैंड साइड काना शुरू कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को अवॉइड कर दिया, तो वो उसका प्रैक्टिस हो गया। अभी कुछ दिन के बाद पावलोव ने क्या किया, रोज रैंडमली चेंज करना शुरू कर दिया, एक दिन लेफ्ट एक दिन राइट, एक दिन लेफ्ट एक दिन राइट, ऐसा शॉक लगाना शुरू कर दिया। तो इससे चूहा पूरा कंफ्यूज हो गया, ये मतलब
इमेजिनेशन नहीं है, एक्चुअल रियलिटी रिसर्च है,
रियल रिसर्च है। तो चूहा क्या करता था, भाग के जाता था राइट हैंड साइड और उधर जाके रुक जाता था, सोचता था कि अरे करंट शॉक मिलेगा तो उसको काने का वो जो
इच्छा तृष्णा
जो करेज
संवेद
करेज
साहस
नहीं आता था, तो भागता था काने के लिए, पर वो जो शॉक के प्रति वो जो द्वेष है वो उसको रोक देता था। फिर दूसरा बाजू भागता था, केक के प्रति राग है ना, भागता था, पर शॉक के प्रति द्वेष है, रुक जाता था। तो ऐसा वो क्या करने लगा, खाता भी नहीं था पर एक जगह पे रुकता भी नहीं था, क्योंकि केक के प्रति तो आकर्षण है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट भाग रहा था वो पूरा। उतने में पावलोव ने क्या किया, वो डोर को खोल दिया और बाहर एक बड़ा केक रख दिया। तो क्या किया चूहा ने, प्रभु जी बोल रहे हैं कि बाहर भाग गया,
बाहर नहीं भागा, वो वहीं पड़ा रहा,
वो ही चक्कर मारते रहा और एक दिन के बाद मर गया।
मर गया,
इतना अब्सॉर्ब्ड था राग और द्वेष, अभिनिवेश में
लिप्त हो गया,
संवर्तन हो गया था, पूरा माइंड को अब्सॉर्ब हो गया था। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राग अभिनिवेश द्वेष अभिनिवेश, राग अभिनिवेश द्वेष अभिनिवेश, इतने में मोक्ष द्वारम अपावृतम, द्वार खोल दिया,
वैकुंठ द्वार खुल गया
और भगवान साक्षात भगवान बैठे हैं।
अरे वो जय जय श्री राधे,
साक्षात प्रभु का दर्शन बैठा था बाहर, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। पर इतना वो मग्न हो गया कि वो द्वार खुलाए देखा नहीं, बाहर केक है वो देखा नहीं, ऐसे चक्कर काट के मर गया। तो ये पावलोव का चूहा कौन है, हम ही है।
हरी हरी।
और भगवान ने जो ये जो पर्दा बनाया, वो पर्दा कुछ इतना खास पर्दा नहीं है, वो काली एक ऐसा एक
सॉफ्टवेयर पर्दा है,
एक सिस्टम बनाया जिसमें हमारा पहले जो अच्छा लगा हमको और जो बुरा लगा वो सबका जो मेमोरी है संस्कार के रूप में हमको दे दिया
बस,
और उससे राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष और उसमें अभिनिवेश होके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, भगवान खड़े हम देख ही नहीं पा रहे क्योंकि पूरा मग्न है।
अरे अरे
अभी मैं ये जो मैसूर गया था ना रिसेंटली, सो मेरा एक और कजिन ब्रदर को भी मैंने, उनका भी नेटिव प्लेस मैसूर ही था, तो उनका मामा का घर गया था, हम दोनों का बीच में बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है। तो स्पेशली मैं जो कृष्ण भावनामृत में आने के बाद और भी वो अच्छा जुड़ गया मेरे से, मतलब वो बहुत सारा प्रश्न पूछता था, मेरे से बड़ा है पर काफी अच्छा संबंध है हमारे बीच में, उसका दो बेटा है छोटा छोटा। तो उसको मेरा ब्रदर को मेरे से बात करने का था और बच्चे लोग बात करने ही नहीं दे रहे थे, तो पापा पापा बोल के उनको बहुत सता रहे थे और मेरे साथ भी आके खेल रहे थे, पर वो देखा कि अरे ज्यादा टाइम नहीं है, चला जाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा उससे, तो थोड़ा देर उनको पैसिफाई मनाने को प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का बुद्धि लगाया, भगवान ने जो किया वही बुद्धि लगाया, दोनों पॉकेट से दो स्मार्टफोन निकाला, दोनों बच्चों का हाथ में दे दिया, एकदम चुप हो गए, दोनों एक एक कोने में जाके बैठ गए, राग थोड़ा देर में अच्छा नहीं लगा, दूसरा ऐप द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, और एक घंटा हम दोनों बात कर रहे थे, ये दोनों का एक भी शब्द मुंह से निकला नहीं, ऐसे 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 घुस गए, उनको बुला रहे हैं खाने के लिए, सुबह का आया आ जाओ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा उनको, राग द्वेष, राग द्वेष। तो एक घंटे हमारा बात हो गया, उसके बाद हम देखे तो बच्चे लोग ऐसे पूरा उसमें एकदम मग्न हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अरे भगवान का यही सिस्टम है, तो और हमारा अंबानी जी ने भी इसमें थोड़ा जियो का फ्री डाउनलोड्स, एक दिन में आप 2 GB 3 GB डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड करते रहो, देखते रहो देखते रहो। तो फिर टाइम कैसा गया, क्या गया, अरे कोई आया था क्या, कुछ बोला था क्या, आपने कुछ सुना नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ कोई ऐसे हमको स्पर्श करते बुलाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, उतना घुस जाते हैं ऐसा, राग द्वेष, राग द्वेष उसमें वो साइकिल में। तो ये कृष्णा का सिस्टम है, कुछ नया अंबानी का सिस्टम नहीं है, ये कृष्णा का सिस्टम है, सिंपल सिस्टम। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ अलग सा कुछ पर्दा नहीं डाला मेरा ब्रदर ने, खाली हाथ में एक एक स्मार्ट आ दिया, तो पापा है कि नहीं कुछ भी उनको समझ में नहीं आया, वो उनका दुनिया में घुस गए, फोन का दुनिया के अंदर घुस गए, ये भी एक फोन का ही दुनिया है,
परफेक्ट
है, और भगवान पास में ही खड़े हैं, हमारा पिताजी भी वो ही है, भगवान ही है, इधर है जगन्नाथ जी, पास में ही है, पर जब स्मार्टफोन हाथ में रहता है तो भगवान तो दिखते नहीं। इतना एप्स है, इतना फ्री डाउनलोड्स है, मूवी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्रिकेट मैच देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, मतलब उसका कुछ
एंड नहीं,
एंड ही नहीं है,
अथा है।
पर जगन्नाथ जी पास में ही है, पर पर्दा लगा दिया, पर वो पर्दा ऐसा एक ग्रॉस पर्दा नहीं है, एक बहुत सिंपल पर्दा है, आपको एक भौतिक चीजों में एकदम व्यस्त बना दिया, बस भगवान दिखते नहीं। तो ये जो है, तो अभी मैं बताता हूं वो 27th वर्ष क्या है।
ये एक मिनट
फोटो
ग्रुप में डाल देना, जो भी
आरडी है।
अभी आप आइडेंटिफाई करेंगे, अभी आप आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है। भगवान बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्तेन, द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति शरन्तपः। ठीक है, ये कितने लोग ने ये श्लोक को सुना है, एटलीस्ट कुछ लोग ने तो सुना है। मैं बताता हूं ये क्या है, ये श्लोक का मतलब है, इच्छा का मतलब है राग, द्वेष का मतलब है
द्वेष,
द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्तेन, समुत्तेन मीन्स उससे उठने वाला द्वंद्व है ना, राग मतलब मुझे अच्छा लगता है, द्वेष मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, द्वंद्व हो गया ना,
कंफ्यूजन,
ड्यूअलिटीज, ये मोहित कर देता है, ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है, ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है। इससे क्या होता है, इच्छा और द्वेष से सर्वभूतानी सम्मोहम, सम्मोहम का मतलब है मोह से सम्मोह हो गया, सम्मोह मतलब सम्यक रूपेण मोह, मतलब पूरी तरफ से मोहित, उसको ही बोलते हैं अभिनिवेश, जो अच्छा लगता है उसके ही बारे में सोचते रहना, जो बुरा लगता है उसके भी बारे में सोचते रहना। तो भगवान बोलते हैं कि सर्गे यान्ति परंतप, ये जो इच्छा द्वेष से जागृत हुआ मोह और उससे बनाया हुआ सम्मोह, ये कब से चल रहा है, सर्गे, जब से ये सृष्टि का, जब से सृष्टि का बनी, सृष्टि का आरंभ से ये चल रहा है, राग द्वेष अभिनिवेश, राग द्वेष अभिनिवेश। ये राग और द्वेष और अभिनिवेश का स्रोत क्या है, आपने कितना अच्छा है अभी तक सुना है, मैं समझने का प्रयास कर, अविद्या, अविद्या ये जो पास्ट संस्कारास है वही है। तो ये जो पर्दा को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये अविद्या, ये जो संस्कार जो है भौतिक, जो राग और द्वेष का जो संस्कार है हमारा, जो अंतकरण में पूरा फैला हुआ है, उसको पूरा मिटाना पड़ेगा ना। तो अभी आप बताइए कि धूल क्या है, अविद्या है ना, और दर्पण क्या है, ये जो अंतकरण है। सो अंतकरण में जब तक स्मार्टफोन रहेगा तब जगन्नाथ जी दिखेंगे क्या,
नहीं दिखेंगे।
तो स्मार्टफोन को हटा देंगे तो
जगन्नाथ जी सामने ही खड़े
हैं। तो ये जो स्मार्टफोन का तुलना में ये जो संस्कार है, भौतिक संस्कार है, भौतिक भोग करने का संस्कार और द्वेष का संस्कार है, ये जो भौतिक संस्कारों को हम मिटा देंगे, जैसे मैंने पहला एक इसका एक तुलना किया कि कोई एक माताजी को शादी के पहले पर पुरुष का कुछ संबंध हो और उसका याद रहेगा तो उनको दूसरा एक पुरुष के प्रति एक आकर्षण पूरी तरह से होना बहुत मुश्किल है। अगर वो मेमोरी पूरा हट गया तो रिलेशनशिप गहरा बन सकता है। तो अभी जैसे मैंने बोला, हम सब जो जीवात्मा है वो सब प्रकृति ही है, और हमको ये भौतिक इच्छाएं, ये जो भौतिक राग, भौतिक द्वेष और भौतिक अभिनिवेश है, ये सब एक परपुरुष का जो के साथ हमारा संबंध का जो अनुभूति है उसका तुलना है। अगर इसको हम पूरी तरफ से मिटेंगे नहीं तो भगवान के साथ एक गहरा संबंध होने का संभावना है ही नहीं। तो भक्ति करने से ये जो पूरा भौतिक जो वासनाएं है ये पूरा मिट जाता है। यही है भगवान बोलते हैं, अगला श्लोक में बोलते हैं, सातवां अध्याय का 28वां श्लोक बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, वो सब आपको तो पता ही होगा, प्रभुपाद बहुत बार ये इसको कोट करते हैं, करते ही रहते हैं। ये शाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते
द्वंद्व मोह
निर्मुक्त
निर्मुक्त
भजन्ते मां
भजन्ते मां दृढ़ व्रता। तो इसका आप सुनिए, ये शाम जिन लोगों का अंतगतम पापम, जिन लोगों का हृदय से, इधर पाप का मतलब पाप नहीं है, पाप करने को जो प्रेरित करता है वो जो संस्कार, अभी हमको समझे कि किसी को सिगरेट पीने का संस्कार है, तो उस अगर वो संस्कार नहीं है तो वो पाप करने के लिए कुछ प्रेरणा है ही नहीं। तो ये बोलते हैं कि येषां तु अंतगतम पापम, जिन लोगों का हृदय से ये जो पाप करने का जो संस्कार है पूरी तरफ से मिट चुका है, पर ये कैसे मिटेगा? जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्मणाम का मतलब है, पुण्य कर्मा का मतलब है पुण्य कर्म, और पुण्य कर्मा का एक और मतलब है वो है किसी को पुण्य कर्मा मीन्स पायस एक्टिविटी, पुण्य कर्मा मीन्स प्लीजिंग एक्टिविटी। प्लीजिंग एक्टिविटी को क्या बोलेंगे?
खुश करना,
किसी को खुश करने वाला जो कर्म है उसको भी पुण्य कर्म बोलते हैं। तो पुण्य कर्मणाम का मतलब है महात्मा गण जिस कर्मा से खुश होते हैं वो कर्मा को भी पुण्य कर्म बोलते हैं। तो महात्मा लोग कौन सा कर्म से खुश हो जाते हैं? भक्ति करने से। महात्मानस तुमाम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। सो वो अनन्य भाव से भगवान को ही भक्ति करते हैं, वो है महात्मा। वैसा महात्मा लोगों को कौन सा कर्म करने से उनको आनंद मिलता है? भक्ति करने से। तो कृष्ण बोलते हैं जिसका जो पाप करने का जो ये संस्कार है पूरी तरफ से मिट चुका है भक्ति करने से, ते वो जो व्यक्ति है द्वंद्व मोह निर्मुक्त। हमने देखा इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, वो ये द्वंद्व का मोह से निर्मुक्त हो जाएगा, मतलब राग और द्वेष से मुक्त हो जाएगा। राग और द्वेष नहीं है
तो
अभिनिवेश भी नहीं है, तो मतलब माइंड पूरा फ्री है, अभी भगवान को देख सकते हैं, भगवान के बारे में ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं? भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वो जो व्यक्ति है मेरा दृढ़ संकल्पना के
साथ भक्ति कर सकता
है, दृढ़ संकल्पना के साथ भक्ति कर सकते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, पर उसके लिए पहले ये अंतगतम पापम, ये जो पाप करने का पाप मतलब काली पाप नहीं है कोई
इच्छा।
अभी हमको मैंने समोसा खाने का जो एग्जाम्पल दिया वो कुछ पाप कर्मा तो नहीं है, पर इंद्रिय तृप्ति तो है,
संस्कार
है? तो भगवान का इंद्रिय को तो तृप्ति करने का हम प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, उसका तो प्रयास तो नहीं है वो। तो जब ये जो संस्कार है भोग करने का या द्वेष करने का जो ये संस्कार है ये पूरी तरफ से मिट जाएगा भक्ति करने के द्वारा, तब वो जो हृदय में दृढ़ भक्ति का उत्पन्न होगा तब भगवान को देख पाएंगे। तो ये जो पहला ऑब्स्टेकल है ये है भौतिक संसार संस्कार, ये जो भौतिक संस्कार है वो भक्ति करने से पूरी तरफ से थोड़ा 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 करके वो निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। तो पर हमको एक चीज करना चाहिए, बार बार ये भौतिक मनोभावना से चीज को इंद्रिय तृप्ति करने का जो ये जो प्रयास है जब तक हम करते रहेंगे तब तक
नया नया संस्कार को हम अर्जन कर रहे हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी हमको भक्ति करने का एक बहुत बहुत दुर्लभ अवसर मिला है, इसको हम पूरी तरफ से यूटिलाइज करके अगर हम भक्ति ही करेंगे और इंद्रिय तृप्ति को थोड़ा 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 करके हम कम करते आएंगे तो क्या करेगा, हम जो माइंड का नेचर क्या है, जो भी अभी अभी जो किया हुआ है, जो
फ्रेश
है मेमोरी में, वो ही इमीडिएटली मन में आता है हमको। तो जो फ्रेश थॉट्स है हमारा, वो अगर भक्ति का ही रहे, जपा किया, जपा के बाद एक लेक्चर सुना और लेक्चर के बाद कुछ
प्रसाद ग्रहण किया
और कुछ सेवा किया, ऑफिस गया, ऑफिस का टाइम में भी भगवान का चिंतन के साथ ही, जैसे भगवान बोलते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करके आप युद्ध करो, तो वैसे जितना हम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइफ टाइम का प्रयास है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो एटलीस्ट जो ऊपर ऊपर जो ऊपर ऊपर का जो याद है,
तो थोड़ा
जो मेमोरीज है वो भक्ति का ही मेमोरीज रहेगा। और जब आप भक्ति कर रहे हैं, नीचे से जो भौतिक इच्छा और राग और द्वेष का जो संस्कार है उसको भक्ति पूरा ऐसे काट रहा है, नीचे से भक्ति काट रहा है, ऊपर से हमारा प्रयास के साथ हम खाली भक्ति का ही जो मेमोरी
संस्कार
जो है उसको हम क्रिएट, हमारा जो स्वेच्छा से वैसा ही भक्ति करके, भक्ति का ही कर्म करके पूरा ऊपर का जो यादें हैं वो भक्ति का ही याद रहेगा, और वो भक्ति करने से नीचे से वो पुराना भौतिक इच्छा का जो याद है वो सब निकलता रहेगा। इसको मैं बोलता हूं कि सरफेस इंप्रेशन मैनेजमेंट, सरफेस इंप्रेशन मैनेजमेंट। जो सरफेस इंप्रेशन है वो आपका हाथ में है, आज जो किया, कल जो किया, परसों जो किया, वही याद ऊपर ऊपर फ्रेश रहता है। अगर वो भक्ति का ही एक्टिविटीज हो तो भक्ति का ही एक्टिविटीज सरफेस में रहता है,
संस्कार भी बन जाएगा।
और नीचे जो भौतिक संस्कार है वो भक्ति करने से थोड़ा 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 करके वो मिटता रह रहा है। तो एक टाइम पे आपका जो सरफेस है, भक्ति का जो सरफेस है, वो मोटा 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 होता रहेगा, नीचे जो भौतिक इच्छा का जो जो लेयर है छोटा 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 होता रहेगा। एक टाइम पे खाली भक्ति का लेयर रहेगा, नीचे का कुछ भौतिक संस्कारों का लेयर है रहेगा ही नहीं। तभी आपका राग द्वेष दोनों भगवान के प्रति ही रहेगा। वो स्तर को बोलते हैं कि भाव, भाव या प्रेम का स्तर बोलते हैं, जब जो भौतिक संस्कार है ही नहीं हमारा अंतकरण में। जो यही है चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो पहला ऑब्स्टेकल को हम निकालेंगे भक्ति करके, तो इसमें हमारा भी प्रयत्न है। भक्ति करना तो हमारा एक प्रयत्न ही है ना, आज मैं भक्ति करूंगा, आज मैं सोला माला करूंगा, आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज स्मार्टफोन में मैं व्हाट्सएप का मैसेज पूरा दिन बैठूंगा नहीं, या व्हाट यूट्यूब का वीडियो देखते टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, वैसा दृढ़ संकल्पना लेके थोड़ा हमारे तरफ से प्रयास करेंगे तो वो और भी इजी हो जाएगा। अगर एक बार हमारा जो जो इच्छा को पूर्ति करने का हम शुरू कर दिया तो नेक्स्ट टाइम और वो इच्छा को ना बोलने में थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। द बेस्ट टाइम टू से नो टू टेम्पटेशन इज नाउ,
फर्स्ट टाइम, यस,
बिकॉज इफ यू से यस नाउ द नेक्स्ट टाइम इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू से नो। अगर ये आप ये टाइम आप जो वो जो बुरी चीज करने का जो इच्छा को, अब अगर आप सोचेंगे ये एक बार मैं कर लेता हूं नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूंगा, वो बहुत बड़ा एक गलत फहमी है। अगले बार उससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको ना बोलने में. तो सबसे इजी टाइम अभी ही है, अभी ना बोल दीजिए और आपको अगला बार उसको ना बोलना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा. तो एक बार आप जीत लिया ये इंद्रिय के प्रति ये जो संघर्ष में एक बार आप जीत लिया तो वो जीत से आप और शक्तिमान बन जाते हैं. फिर नेक्स्ट टाइम जीतना और भी इजी हो जाता है. तो ऐसे कर करके हम भक्तिमयी सेवा ही करते रहेंगे और ऊपर का जो संस्कार है वो भक्ति का ही संस्कार रहे. और वो भक्ति करते करते वो नीचे से बुरी संस्कार भी निकल गए. एक दिन देखते देखते हम भाव और प्रेम का स्तर पे पहुंच जाएंगे.
हरी, 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 हरी,
फिर पूरी तरह से वो जो योग माया का जो
पर्दा
है
आवरण
वो कहां गया हमको समझ में भी नहीं आएगा. तो यही है जो पहला जो बेनिफिट है भक्ति करने का, चेतो दर्पण मार्जनम. ये जो चेतो दर्पण मार्जनम का यही है मतलब. तो भक्ति करने से ऐसा ही हम भगवान के प्रति एक कदम आगे रख रहे हैं. जो पुराना जो कृष्ण भक्ति का प्रतिकूल, कृष्ण के संबंध जोड़ने का जो प्रतिकूल संस्कारें हैं निकल गया भक्ति करने से. सो ये है पहला बेनिफिट भक्ति करने का. थैंक यू.
8:40, 8:50.
ठीक है, अभी 8:50 हो गया टाइम. तो
10 minutes.
ठीक है, एक और बता देता हूँ. 7 को तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 7 बेनिफिट. तो एक बेनिफिट को तो हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत.
तो
वो है चेतो दर्पण मार्जनम. तो अभी दूसरा शुरू करने से पहले अगर आपको इसके बारे में कुछ प्रश्न है, संशय है, कुछ ऐड करने का आप इच्छा करेंगे, कुछ आपका अनुभूति से कुछ आपको आप शेयर करने का चाहेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं. आप हिंदी में पूछ सकते हैं.
उनको भी प्रॉब्लम है.
अच्छा, उनको भी हिंदी. अच्छा, हिंदी. हाँ, ओके, इंग्लिश में पूछे. मैं
आप बोलिए.
हमारे कर्म करने की वजह से
there are two things. अगर ये पूछ रहे हैं कि संस्कार के वजह से हम एक कर्म का चक्कर में फंस जाते हैं या इसके वजह से हमारा क्या इसका संबंध है, अभी हम थोड़ा हम आप भक्ति रसामृत सिंधु या नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़े होंगे. जो लोग भक्ति शास्त्री कर चुके हैं उसमें ऐसा लिखते हैं कि हमारा जो क्लेश है, जो सफरिंग है, उसका 3 कारण है. वो है अविद्या, बीजम. बीजम का मतलब है भौतिक इच्छा, और अविद्या है संस्कार, और इससे पापम. ये पे 2 प्रकार का आपका रिजल्ट मिलता है. एक है अप्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म. ठीक है, तो ये पाप करने से 2 चीज होता है. एक है प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म मिल जाता है, पर ये पाप करने के वजह से
एक और संस्कार बढ़ भी जाता है, एक और पाप का जो संस्कार है वो ऐड हो जाता है, उसके वजह से ये जो इच्छा है और भी दृढ़ हो जाता है,
बढ़ जाता है,
और जो पाप करने का जो चांस है, प्रवृत्ति है, और बढ़ जाता है। फिर उसके वजह से पाप करेंगे तो एक और संस्कार ऐड हो जाता है, उसके वजह से वो और पाप करने का जो इच्छा है और दृढ़ हो जाता है, उसके वजह से वो पाप हो जाता है, और पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाता है। ऐसा एक लूप है इधर, पर जो भक्ति करने से ये मिट जाता है संस्कार। तो अगर ये जो संस्कार नहीं है भौतिक इच्छा का, तो भौतिक इच्छा पैदा ही नहीं होता है, और पाप होता ही नहीं है, और पाप होता नहीं है तो अप्रारब्ध और प्रारब्ध का तो प्रश्न ही नहीं है।
और कूटम प्रभु
वो अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अप्रारब्ध अप्रारब्ध
नहीं, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रारब्ध और अप्रारब्ध का डिफरेंस क्या है। प्रारब्ध कर्म जो है, ये जो लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो सुख या दुख का अनुभूति, और ये जो लाइफ में आप बाद में भी अनुभूति करेंगे सुख या दुख का, वो प्रारब्ध बोलते हैं। और जो फ्यूचर लाइफ टाइम्स में जो आप अनुभूति करेंगे सुख और दुख, वो अप्रारब्ध है। ठीक है, मतलब और कुछ किसी को शेयर करना है या प्रश्न है? ये जो हमने पहला जो डिस्कस किया है उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी हम जो सेकंड है, सेकंड बेनिफिट ऑफ चैंटिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है भवमहा दावाग्नि निर्वापणम। तो इसका मतलब क्या है, आप जो समझते हैं वो बताइए। दावाग्नि का मतलब है जंगल की आग,
भव सागर के जंगल की आग,
भव सागर
इसे कोई लगाता नहीं,
मटेरियल वर्ल्ड
लग जाता है,
मटेरियल वर्ल्ड के जंगल की।
तो वो निर्वापणम का मतलब क्या है, बुझती है, खत्म हो जाती है। तो भव महा दावाग्नि निर्वापणम का मतलब है, ये जो भौतिक संसार में तीन प्रकार का जो ताप है,
क्लेश,
आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, ये सब तो आपको पता है। आध्यात्मिक मतलब हमारा खुद का मन और शरीर का द्वारा जो तकलीफ है वो, और आदि भौतिक है दूसरों से, और अधिदैविक है नेचर की वजह से तकलीफ है। तो एक रिलेशनशिप में देखेंगे, अगर हम कोई भी कारण से बहुत पीड़ित है, हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, या हमारा बॉस है बहुत हमको तकलीफ दे रहे हैं, या ऑफिस से जल्दी आने का प्लान किया पर इतना बारिश हो रहा है कि ऑफिस से निकल ही नहीं पा रहा हूं, तो ऐसा कुछ क्लेशों से हम पीड़ित है, तो वो टाइम पे हमारा कोई भी रिलेशन आके हमको, हमसे कुछ अच्छा सा बात करना चाहेंगे, हमसे कुछ
संबंध
जोड़ना चाहेंगे, तो हम उसमें हमारा मन जाता ही नहीं है। यही जो क्लेश है वही हमारा मन में घूमता रहता है। तो ये जो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक जो क्लेश है, ये जो पीड़ा के वजह से हमारा मन पूरा उसके प्रति ग्रस्त हो जाता है, और भगवान के प्रति सोचने का
क्षमता भी खत्म,
क्षमता नहीं रहता है।
जब जो जीवात्मा भगवान को भूलना चाहता है तो ये जो त्रिविध ताप है उसके द्वारा भी भगवान बुला देते हैं। तो पर जब भागवतम में 11वां स्कंद में एक अवधूत ब्राह्मण का एक कथा आता है, प्रसंग आता है, उसमें जो अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं अलग अलग चीजों को देख के क्या समझा मैंने, 24 गुरुस। तो उसमें वो बोलते हैं कि मैंने, अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं कि एक बार मैंने एक एरो मेकर, मतलब एक बाण बनाने वाला जो ये है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ, क्या बोलते हैं, लोहार, जो लोहार है, पर बाण बनाने वाला लोहार है। ये जो बाण बनाने हैं बहुत आसान चीज नहीं है, एक कुछ कढ़ाई या कुछ चम्मच बनाने वाला चीज नहीं है। आजकल तो बाण कोई यूज नहीं करते हैं, सब न्यूक्लियर वेपन्स या यही यूज करते हैं। पर वो जमाने में जब बाण और धनुष यूज करते थे तो वही मेन वेपन था। ये जो बाण है उसका जो टिप है एकदम शार्प रहना चाहिए, तब वो टारगेट को पेनिट्रेट कर पाएगा, उसके अंदर जा पाएगा। और उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को
माध्याकर्षण,
माध्याकर्षण जो जो स्पॉट है वो सही होना चाहिए,
परफेक्ट, नहीं तो टेढ़ा चला जाएगा,
नहीं तो वो अपना जो टारगेट है टारगेट तक पहुंचेगा ही नहीं। वो शार्प, अगर उसका टिप शार्प भी हो, अगर वो टारगेट तक वो नहीं पहुंचा तो एक ये जो बाण बनाने वाला जो लोहार का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए उसको,
प्रिसिजन।
तो ऐसा एक लोहार था जो बहुत ही मशहूर लोहार था, ये जो बाण बनाना उसका स्पेशलिटी था। तो ऐसा एक बाण बना रहा था और वो बाण बनाने का टाइम में उसका वो लोहार का वो दुकान के सामने से जो राजा थे उस देश का राजा, और पूरा बैंड बाजा कैसा, बैंड बाज के साथ, और उनका पूरा मंत्री और पूरा बहुत सारा जन प्रोसेशन, तो ऐसा आवाज आ रहा था, पर ये लोहार को तो सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो बाण को एकदम सही तरह से बनाने में वो एकदम एकाग्र चित्त था, वो
परफेक्ट,
तो वो पूरा उसको सुनाई भी नहीं दिया उसको, वो लोहार को। तो बनाता रहा वो प्रोसेशन चला भी गया पर वो सुना ही नहीं। ये अवधूत ब्राह्मण दूर से ये सब देख रहे हैं, तो उससे वो अवधूत ब्राह्मण सीखे हैं, अरे ऐसा एकाग्र चित्त सा से मैं भक्ति करूंगा तो कितना जल्दी मेरा आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगा। तो पर अगर हमारा एकाग्र चित्तता नहीं है तो हमको निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से ही एकाग्र चित्तता आ जाएगा। एक प्रकार का एकाग्र चित्तता नहीं होने का कारण है जो पहले हमने देखा, पुराना संस्कार, और दूसरा है ये तीन प्रकार का पीड़ा। भक्ति करने से ऐसा एक थोड़ा प्रयत्न करके भक्ति करेंगे तो वही भक्ति में भगवान देखेंगे कि अरे इसको रुचि ही नहीं है भक्ति करने में, फिर भी इतना प्रयत्न करके मुझे प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो मैं वही भक्ति का जो कर्म में मैं रुचि डाल देता हूं, बोल के भगवान उसमें रुचि डाल देते हैं, तो इतना आनंद आना शुरू हो जाता है उसका भक्ति में। जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं, भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सोल्बनमुरु व्यसनम बवाब्दिम नेश्ये भवद गुण कथामृत पानमत्तः। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रार्थना, ध्रुव महाराज का प्रार्थना आता है 14 स्कंद और 9वीं अध्याय में। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि अभी उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, मतलब पूरा भक्ति करने का एकमात्र जो
लक्ष्य
है भगवान को, भगवान का साक्षात दर्शन करना। तो वो दर्शन मिल गया उनको, तो भगवान पूछते हैं आपको क्या चाहिए। ध्रुव महाराज बोलते हैं मुझे एक चीज चाहिए, भक्तों का संग। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयनम। कैसा भक्त को, जिसका जो हृदय में भक्ति का प्रवाह गंगा जैसा बह रहा है एकदम जोर से, और अमलाशयानम, और उनका हृदय एकदम निर्मल है भक्ति का भावनाओं को छोड़ के, और भी कुछ भौतिक भावना है ही नहीं उनका, वैसा एक भक्तों का प्रसंग चाहिए। वो क्या करेंगे उनका संग में, ये न अंजसा उल्बणम उरुव्यसनम भवाब्धिम नेश्ये। बोलते हैं कि बहुत ही आसान से ये जो भवसागर है जो तापत्रयों से एकदम पूरा पीड़ित है, वो जो भवसागर को भवत गुण कथामृत पान मत्तः, आपका गुणगान गाते गाते और आपका कथाओं के सुनते सुनते एकदम मग्न होके, और उसका जो आनंद है वो आनंद का अनुभूति से ये तापत्रयों का अनुभूति मुझे समझ में भी नहीं आएगा, तो ऐसा भक्तों का संग दे दीजिए। ऐसे ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं। तो भक्ति करने से अगर हम थोड़ा मन लगा के, थोड़ा भगवान को थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आप लोग, प्रभु जी बोले कि आप लोग ने उपदेशामृत का चर्चा भी किया है, आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, क्या है वो, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकान, कौन सा वर्ष है, उसमें छठा श्लोक, सातवां श्लोक छठा श्लोक क्या है उसमें,
सेवेंथ श्लोक
विद्या वित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम कलुसैव जुष्टा स्वाद्मी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई जॉन्डिस, जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं,
पीलिया
ना, अगर कोई पीलिया का जो रोग से कोई पीड़ित है तो एक बहुत स्ट्रेंज डिसीज होता है वो, कोई भी मीठा चीज खाएंगे तो कड़वा लगता है वो, पर आयुर्वेद के हिसाब से वो जो पीलिया का जो दवाई है वो है गन्ने का जूस या कड़ी शक्कर, ये खाएंगे तो आपका पीलिया का जो रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। तो पर पीलिया से जब आप पीड़ित है तो गन्ने का जूस पियेंगे तो एकदम कड़वा लगता है, पर रूप गोस्वामी बोलते हैं जैसा ही हमारा जो जो इंद्रियों है, जिह्वा है, वो अविद्या का पीलिया से पीड़ित है, इसमें इस ये, और वो जिह्वा से हम हरिनाम का जप करेंगे
तो कड़वा
लगेगा, और वो एकदम कड़वा लगेगा, पर वो बोलते हैं कि कड़वा लग रहा है बोल के आप निराश मत हो जाइए, आदराद अनुदिनम कलुसैव जुष्टा, जैसे वो पीलिया से पीड़ित जो व्यक्ति है, वो रोगी है, अगर वो कड़वापन को
भूल के
वही गन्ने का जूस को कैसा भी थोड़ा टॉलरेट करके रोज, और वो एकदम अच्छा भावना से वो पिएगा, वो रोग थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, तो रोग ठीक हो रहा है उसका जो सिम्टम क्या है, सिम्टम को क्या बोलते हैं, लक्षण क्या है,
उसको उसकी स्वीटनेस मालूम पड़ेगी,
कड़वापन कम 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 होता रहना चाहिए दिन बाय दिन। अगर वही गन्ने का जूस अगला दिन उतना ही कड़वा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा कम कड़वा रहना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा और कम कड़वा, थोड़ा और कम कड़वा, थोड़ा और कम कड़वा, और एक टाइम पे वो कड़वा ही नहीं रहेगा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका मिठास बढ़ता रहेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और एक टाइम पे वो बोलेगा कि अरे एक और ग्लास मिलेगा क्या, तो मतलब डॉक्टर बोलेगा कि अभी आप घर चले जाओ, अभी आपको हम गन्ने का जूस हम नहीं पिलाएंगे, आप ही खरीद के पी लो, अभी वो गन्ने का जूस उसको दवाई नहीं है, अभी उसको इंद्रिय तृप्ति है, तो अभी हम पर उसके लिए ना वो स्तर तक आने के लिए उसको पहला तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर वो प्रयत्न करेगा तो भगवान वही भक्ति में मिठास को भर देंगे, पर तब तक हम प्रयत्न करने के लिए रेडी है क्या, वो हमारा हाथ में है। हमको थोड़ा धैर्य बना के थोड़ा प्रयत्न कर लेंगे, और वो प्रयत्न करना संघ में बहुत इजी है, क्योंकि संघ में अगर एक दूसरों के प्रति अच्छा एक भावना है, अच्छा एक संबंध है, तो वो जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल को क्या बोलते हैं,
संघर्ष,
वो जो संघर्ष है वो संघर्ष हमको अकेलापन में करने का जरूरत नहीं है, साथ में कर सकते हैं,
तो आनंद बन जाएगा।
तो जितना भी कठिन संघर्ष हो अगर साथ में हो तो इजी है, जितना भी ईसी संघर्ष हो वो अकेलापन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा जीवी में गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में है, उधर हमारा एक ट्रेडिशन है जो अनंत चतुर्दशी, जब हरिदास ठाकुर का जो डिसअपियरेंस डे आता है, उनका चिरोभाव महोत्सव, उस दिन हम सब मिलके सुबह 12 बजे, मतलब एकदम रात को 12 बजे से शुरू करते हैं, 192 को क्या हुआ, 192 माला करने का प्रयास करते हैं, और काफी लोग कर भी देते हैं, क्योंकि संघ में तो
नॉनस्टॉप,
ये जो संघर्ष है हमको अकेले में करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रयास करके एक दूसरों के प्रति एक अच्छा संबंध जोड़ लेते हैं, तो ये संघर्ष हम साथ में कर सकते हैं, साथ में करेंगे तो इसमें बहुत आनंद ही आनंद है, और साथ साथ चले भी जाएंगे, तो ये इसका जो सीक्रेट है वो रूप गोस्वामी वही उपदेशामृत में बताते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते च, ये षड्विधम् प्रीति लक्षणम् है। ये छह चीज को हम थोड़ा ध्यान पूर्वक करेंगे, हमारा जो लक्ष्य है उसको मन में रख के भक्तों के साथ अगर करेंगे, तो ये संघर्ष को हम अकेला करने में, अकेला करना जरूरत नहीं, साथ में करेंगे संघर्ष, साथ में करेंगे तो इजी हो जाएगा,
अरे अरे
अकेला करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो साथ में भक्ति करने का जो ये संघर्ष करेंगे, तो हम सबका लाइफ में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके जो वही भक्ति का जो कार्य में मिठास आना शुरू हो जाएगा। जब वो मिठास बढ़ता रहेगा तब ये तापत्रयों का अनुभूति हमारा हम नोटिस भी नहीं करेंगे। जब वो संबंध थोड़ा गहरा होना शुरू हो जाता है, तो ये तापत्रयों का अनुभूति होता ही नहीं है। एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं, उसके साथ हम इसको खत्म कर देंगे। ये स्टोरी भी रियल है, कुछ कल्पना नहीं है, और मेरा सिस्टर के बारे में ही। मेरा जो सिस्टर है पढ़ाई अच्छा लगता है उनको, पर पढ़ाई से ज्यादा उनको नींद अच्छा लगता है था पहले है? तो मतलब अबो एवरेज स्टूडेंट थी वो, पर कुछ भी हो 9 बजे के बाद उनका नींद चाहिए उनको। वो बोर्ड एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, कोई भी बड़ा एग्जाम हो, कुछ परवाह नहीं है। 9 बजे हो गया तो मैं सो जाऊंगी और सुबह 6 बजे ही उठूंगी, कुछ भी एग्जाम हो। तो अभी पूछा, अरे पढ़ाई हो गया क्या? 3 चैप्टर बाकी है, तो क्या करने वाली है? सोने वाली। तो हम एकदम टेंशन हो जाते थे, मैं, मेरा पिताजी और माताजी, तीनों लोग, पर वो एकदम टेंशन फ्री रहते। 9 बज गया तो जाके सो जाओ। हम बोलते थे कि नहीं नहीं आज आपको सोना नहीं चाहिए, थोड़ा पढ़ाई करके सो जाओ। तो वो बोलती थी कि ठीक है आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, दरवाजा बंद कर देती थी, लाइट चालू रख के आंख में पट्टी मार के सो जाती। तो हम सोच रहे होंगे कि अरे अभी तक लाइट पड़ रहा है, 11 हो गया 12 हो गया, अरे अभी तो उसको सोना ही चाहिए, नहीं तो एग्जाम में जाके सो जाएगी। बोल के हम दरवाजा खोलेंगे तो आंख में पट्टी मार के वो सो गए। तो अभी फिर उनका कॉलेज खत्म हो गया, जॉब भी लग गया, जॉब जाना शुरू हो गई, फिर उनको शादी भी हो गया, फिर बच्चा हो गया, एक बच्ची। तो बच्ची को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो रात में सोती नहीं है। तो 12 बजे 1 बजे उठ जाती है और क्या करेंगे अभी, हस्बैंड तो
सो रहे हैं,
हम नहीं उठेंगे, आपको जो करना है करो, तो उसको ही उठना पड़ता है। तो उठ जाती है और उनको उनके साथ थोड़ा रहना पड़ेगा फिर सुबह तक। तो वैसा अभी ऑफकोर्स लास्ट 1 साल से उन्होंने जॉब छोड़ दिया, अभी वो बच्ची को 7 साल उम्र है, अभी भी उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, अभी भी रात को जल्दी उठ जाती है, तो वो दिन में सो के कवर अप कर देती है, पर मेरा सिस्टर को नहीं होता है वो, जॉब तो जाना पड़ेगा। तो जिसको कम से कम 8 घंटा नींद चाहिए था वो अभी 4-4 घंटा नींद से निकाल रही है, दिन काम चला रही है। कैसे?
मजबूरी
नहीं, मजबूरी तो पहले भी था, सेमेस्टर एग्जाम का मजबूरी था, नहीं अभी तब भी सेमेस्टर एग्जाम का मजबूरी था, बोर्ड एग्जाम का मजबूरी था, पर अभी संबंध है,
संबंध रिलेशनशिप,
अफेक्शनेट रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप का मिठास का जब अनुभूति हो गया
फिर वो दर्द नहीं है,
तो
सफरिंग नहीं,
दर्द को भी वो
नींद,
जो 8 घंटा का नींद उनका स्टैंडर्ड था उससे 4 घंटा तक आ गई अभी। अभी हम पूछते हैं उनको, अरे 4 घंटा से हाउ यू आर फंक्शनिंग, कैसे हो रहा है आपको?
हो जाता है भैया,
अरे हमको तो होता ही नहीं है, आधा घंटा भी नींद रात का ठीक से हुआ नहीं तो दिन भर दिमाग एकदम ये हो जाता है, गर्म हो जाता है। वही है अभी आप गोपीनाथ से मीरा रोड, अगर रोड रोड से आप आएंगे तो बांद्रा के आसपास कहीं पे तो एक एक
फ्लाईओवर
नहीं, एक डीटी जैसा है, ए चाइल्ड गिव्स बर्थ टू ए मदर, देखा है आप? एक माता एक उनका बच्चों को ऐसा पकड़ी है, तो उसमें लिखा है चाइल्ड गिव्स बर्थ टू ए मदर। तो मैंने मेरा आंख से देखा है मैंने, तो यही है क्या, इसको 4 घंटा नींद से कैसे हो रहा है? तो हमको तो समझ में ही नहीं आया, पर वही है वो जो भगवान के साथ जो अगर वो संबंध हो गया, जोड़ गया, जुड़ गया, तो ये तापत्रयों को तो हम ऐसे ही पार कर लेंगे। तो यही है जो सेकंड जो बेनिफिट है भक्ति का, जो एक तापत्रयों को पार करने में मदद करता है, पर उसके लिए हमारे तरफ से थोड़ा प्रयास करना हो। जैसा वो पीलिया का जो रोगी है, पीलिया से जो पीड़ित रोगी है, उसको थोड़ा वो दवाई खाने का जो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उसको खा लिया तो थोड़ा थोड़ा करके वही दवाई मीठा बन जाएगा। तो उतना प्रयास हम करेंगे, करके थोड़ा भक्ति करने का जो ये करेंगे, तो एक दिन वो जो तापत्रय है वो क्या है हम
पता भी नहीं चलेगा।
वो यही है भव महा दावाग्नि
निर्वापणम,
भक्ति का जो सेकंड जो बेनिफिट है वो है ये भव महा दावाग्नि निर्वापणम। ये तापत्रयों से हमको पार करने का जो जो भक्ति में ऐसा अब्जॉर्ब कर देता है, तापत्रयों से हम पार कर सकते हैं। तो ऐसा ये जो सेकंड बेनिफिट है भक्ति में, भक्ति का, बाद में कभी समय मिला तो बाकी पांच जो बेनिफिट है भक्ति का उसका हम चर्चा करेंगे।
टॉप टॉप जो हेडलाइन से वो बता सकते हैं बस खाली,
फिर आपको सस्पेंस नहीं रहेगा।
अरे कृष्णा, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कब आ रहे हैं वो डेट बता दीजिए। अरे बोल, हम आ जाएंगे वापस काउंसिलिंग मीटिंग वाले थे। प्रभु जी, अब जब तक सात पूरे नहीं हो जाते। प्रभु जी
बहुत धन्यवाद, आपने मेरा टूटा फूटा हिंदी का भी आपने टॉलरेट किया इतना देर, और पहला हिंदी का
इतना देर नहीं, इधर ही मेरा
प्रैक्टिस हो गया।
मजबूरी है, जाना है, नहीं तो भाई हम तो और भी कंटिन्यू करेंगे।